देवेवर्षत्यसौ देवो नर्देव वपुर्हरिः कृच्छ प्राणः प्रजाहेश रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रव। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की देवे तब देवता इंद्र अवर्षति वर्षा नहीं करता, असौ वह देव महाराज पृथु नर देव राजा का वपुः शरीर युत हरि ही भगवान। कृच्छ्र प्राणः दुखी जीवात्माएं प्रजाः नागरिक ही निश्चय ही एषः यह रक्षिष्यति रक्षा करेगा अंजसा सरलता पूर्वक इंद्रवत राजा इंद्र के समान। अनुवाद, जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे तो यह राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। इस प्रकार अनावृष्टि सूखे ब्रैकेट में सूखे से वह नागरिकों की रक्षा कर सकेगा। तात्पर्य, सूर्य तथा इंद्र देव से राजा पृथु की तुलना अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्गलोक के राजा इंद्र पर पृथ्वी तथा अन्य लोकों में जल वितरित करने का भार है। यहाँ यह इंगित है कि इंद्र द्वारा अपना कार्य ठीक से न किए जाने पर राजा पृथु स्वयं वर्षा जल का वितरण कर सकेंगे। कभी कभी स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वी वासियों पर इसलिए कुपित हो उठते हैं क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे यज्ञ नहीं करते। किंतु राजा पृथु भगवान के अवतार होने के कारण इंद्र की कृपा पर निर्भर नहीं रहते थे। यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि यदि वर्षा का अभाव हुआ तो तो राजा पृथु अपनी दैवी शक्ति से इस अभाव को दूर कर देंगे। ऐसी शक्ति का प्रदर्शन वृंदावन में वास करते समय भगवान कृष्ण द्वारा भी किया गया था। जब इंद्र ने 7 दिनों तक वृंदावन में अखंड वर्षा की तो श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति धारण करके निवासियों की रक्षा की थी, इसलिए भगवान कृष्ण को गोवर्धनधारी भी कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसमें जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, मतलब जीविका कमाने के लिए जो भगवान का गुणगान करते हैं, ऐसे लोगों को ऋषि गणों ने नियुक्त किया कि पृथु महाराज का गुणगान करें। बहुत सुंदर, असल में भागवतम का, इसलिए भागवतम अमर शास्त्र है और ऐसा फल है जिसको कहीं से भी खाएं तो बहुत मीठा लगता है। तो किसी भी प्रसंग पे जाएंगे, एक महाराज हैं, वो बोलते हैं जब भी वो भागवतम स्टार्ट करते हैं, कहीं पे भी भागवतम का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तो हर बार बोलते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो सब सोचते हैं कौन सा प्रसंग है, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो फल है ये ऐसा मीठा आम है भागवतम, कि कहीं से भी खाएं, एक तो उसमें ना तो ये आम में ना तो गुद्दा है, ना तो छिलका है और ना गुठली है, सिर्फ गुद्दा ही गुद्दा है, रस रसमालयम, रस का आलय है। और ये कहीं से भी खाएं, किसी भी प्रसंग को लें तो उतना ही रोचक होता है, उतना ही मधुर लगता है, अगर उसको ठीक से ढंग से हम समझें और परंपरा को लॉयल रहते हुए, परंपरा को क्या बोलते हैं, लॉयल मतलब प्रामाणिक तरीके से, परंपरा से इधर उधर हटके ना जाएं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कुतर्क करते, ये कुतर्क जो अपसंप्रदाय वगैरह है उनमें ना जाते हुए, इधर उधर अपनी बुद्धि को अशुद्ध ना करते हुए अगर ठीक से धारण करें भागवतम को तो बहुत ही रस देता है। तो यहाँ पे जो प्रसंग चल रहा है ये पृथु महाराज का, आज हम आदि राजा जो पृथु महाराज हैं, जिनको आदि राजा बोला गया है, उनको थोड़ा सा हम उनका गुणगान करने का प्रयास करेंगे। और इसमें कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, आप सभी अग्रणीय भक्त हैं। तो गुणगान करने का इन राजाओं को या प्रभुपाद को या किसी भी आचार्य को गुणगान करने का सबसे अच्छा तरीका है, चलिए सिर्फ बोलने से पहले एक थोड़ा सा प्रभुपाद की एक लीला बताता हूँ। एक प्रभुपाद के शिष्य थे, वो प्रभुपाद जी यहाँ पे जब वृंदावन में परिक्रमा करते होते थे तो वो हमेशा वो प्रभुपाद परिक्रमा कर रहे थे और वो पूरा का पूरा ब्रह्म संहिता गा रहे थे। जो सामने वाला फ्रंट डोर है वहां पर खड़े होकर वो ब्रह्म संहिता गाते थे। उन्होंने ही बताया, उनका नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने भागवत में बोला था, वो हमें वो पूरा भागवत ये ब्रह्म संहिता गा रहे थे। प्रभुपाद जितने बार जाते हो ब्रह्म संहिता गाते होते कोई ना कोई श्लोक। तो नॉर्मल तरीके से हम सोचेंगे कि प्रभुपाद बोलने चेहरे हुआ बेटा, बहुत अच्छा ब्रह्म संहिता याद की, मेरे वचनों का पालन किया। लेकिन प्रभुपाद एक बार गए, दो बार गए, तीन परिक्रमा के बाद प्रभुपाद परेशान हो गए, सामने गए और बोले व्हाई डोंट यू डू समथिंग प्रैक्टिकल, तुम कुछ व्यावहारिक कुछ करते क्यों नहीं हो, ये क्यों? क्योंकि प्रभुपाद उसमें मनोभाव समझे कि वो बस प्रभुपाद को इम्प्रेस करने के लिए कुछ, हाँ मैंने भी याद किया प्रभुपाद, थोड़ा सा याद कर दिया। तो प्रभुपाद वो अहंकार जो दिखा प्रभुपाद को उसके कारण ये चीज बोले। एक और बार प्रभुपाद को ऐसे ही, एक भक्त जहां पे भी प्रभुपाद के सर्वेंट थे, जहां पे भी प्रभुपाद जाते हैं, जिस भी एयरपोर्ट में जब भक्तों आते हैं, ये जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद करते हैं, प्रभुपाद अरे चुप बैठ रहे, क्या बकवास कर रहे हो, वाई फिर से वही बोले, वाई डोंट यू डू समथिंग प्रैक्टिकल। तो सबसे अच्छा गुणगान जो है इन भक्तों का वो तब होता है जब हम इनके आदेशों का हम पालन करते हैं। ऐसा बोलते हैं लाइक फादर लाइक सन, कि अगर हमको अपने पिता का सही गुणगान करना है, पिता के नाम को रोशन करना है, तो हम कुछ ऐसा करें जो उन्होंने हमारे को शिक्षा दी कि बेटा ये मत करो बेटा वो मत करो, जो उन्होंने हमको मॉरल वैल्यूज दिए, मैं कर्मी पिता की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने जो हमको शिक्षा दी अगर उसको ठीक से हम करेंगे तो अपने आप लोग ये पूछेंगे, जब हमको देखेंगे तो पहला पूछेंगे इसकी जाति क्या है, पूछेंगे इसका बाप कौन है दादा कौन है, तो अपने आप उनका ग्लोरिफिकेशन हो गया। तो तो हम अगर इनके चरित्र को अपने जीवन में, जो इनके आदेश हैं उनको अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो सही उनका गुणगान है। तो इसलिए हम इस चरित्र से हम थोड़ा सा जैसा दिया है इसमें, तो पृथ्वी महाराज ने जो शिक्षाएं दी हैं उन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे थोड़ा आगे जाके। उससे पहले ये जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कवर करते हैं, इस तात्पर्य में वो ये बोलते हैं कि पृथ्वी महाराज हरि तात्पर्य में और ये सारे श्लोकों की सीरीज में, स्पेशली यहां पे पृथ्वी महाराज इतने शक्तिशाली थे, इसके लिए उनको आदि राजा बोला जाता है, कि उनकी तुलना में और कोई भी राजा आसपास भी नहीं आ सकता। अगर हम कोशिश भी करें, मान लीजिए कोई राजा बन जाए और वो कोशिश भी करे तो उनके आसपास नहीं आ सकता। वो इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने ये पृथ्वी महाराज जो जीव हैं, वो शक्तावेश अवतार उनको यहां पे बोला गया है, तो ये जो जीव है इनको स्पेशल शक्ति प्रदान की कि ऐसे अभूतपूर्व कार्य करें, न भूतो न भविष्यति, ऐसे कार्य करें जो कि आगे कोई राजा ना कर सके। जैसे कि वो जब सूरज, उन्होंने देखा सूरज एक जगह पे तापमान दे रहा है, एक जगह पे अंधेरा रह रहा है, तो दूसरा सूरज बन गया, कोई नहीं कर सकता। एक श्लोक में बताते हैं पृथ्वी महाराज आगे जाके, और उन्होंने ऐसा किया कि वो जितने देवी देवता थे उतने, वो भी देवी देवताओं के, हर देवी देवताओं के रूप में वो नागरिकों को जो देवी देवता प्रदान करते हैं वो कर रहे थे। तो ऐसा हो नहीं सकता, 33 करोड़ देवी देवताओं की भूमिका एक व्यक्ति नहीं निभा सकता, कोई देवी देवता भी नहीं निभा सकता, ना तो देवी देवता निभा सकता, ना ही भगवान ने कभी ऐसा किया। जितना भगवान ने पृथ्वी महाराज को शक्ति प्रदान की, इतनी कभी भगवान ने खुद इतनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में बोलते हैं, ध्रुव महाराज के तात्पर्य में, कि भगवान बैठे हैं अपने जीवों को अपने से ज्यादा प्रसिद्धि देने के लिए, भगवान चाहते हैं, लेकिन क्या उसकी कीमत है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। भगवान तो चाहते हैं कि हम एक एक जो बैठे हैं यहां पे, अभी जो भक्ति मार्ग में लगे या नहीं भी लगे, भगवान चाहते हैं हमको उनसे ज्यादा प्रसिद्धि देना, हमको भगवान बहुत ज्यादा शक्ति देना चाहते हैं ताकि हम उनका कार्य कर सके। परंतु इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन लगती है, ये शक्ति प्राप्त करने के लिए। वो क्वालिफिकेशन क्या है उसकी चर्चा करने से पहले, यहां पे जो भगवान, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जब इंद्र वर्षा नहीं कर रहे थे, जैसे भगवान कृष्ण ने तो जब इंद्र ने वर्षा की तो उसको रोका ही, लेकिन यहां पे पृथ्वी महाराज को ऐसी शक्ति दी कि जब वर्षा नहीं कर रहे थे इंद्र, तो पृथ्वी महाराज वर्षा कर सकते। तो ये हमको बहुत महत्वपूर्ण समझने वाली बात है कि पृथ्वी महाराज ने की क्वालिटीज क्या है। पृथ्वी महाराज को नरदेव बोलते हैं और सारे राजाओं को नरदेव बोलते हैं जो पृथ्वी महाराज के पद चिन्हों पर चले, जो वेण के पद चिन्हों पर चले वो नहीं। आगे जाके पृथ्वी महाराज जब शिक्षा देते हैं अपने नागरिकों को, तो वहां पे बोलते हैं कि मेरे सारे जो अग्रणीय राजा हुए, बलि महाराज, ध्रुव महाराज वगैरह जो हुए, वो सारे लोगों ने भगवान को सर्वश्रेष्ठ माना, लेकिन मेरे पिता जैसे मूर्ख, एकदम लीचड़ जैसे व्यक्ति ही भगवान को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते और भगवान की जगह अपने आप को पूजने के लिए लोगों को बोलते हैं। ये वो बोलते हैं, अपने ही पिता को उन्होंने क्रिटिसाइज किया वहां पे। तो पृथ्वी महाराज ये सिखा रहे हैं हमको कि पृथ्वी महाराज ने जो रक्षा की, नरदेव का मतलब है कि अपने नागरिकों की रक्षा करे। सारे राजाओं का कर्तव्य यह बनता है कि अपने नागरिकों की रक्षा करे। रक्षा तीन प्रकार से होती है, पहली रक्षा तो शरीर की रक्षा, दूसरी रक्षा है मेंटल इमोशनल, फिजिकल इमोशनल मतलब मानसिक तौर से रक्षा की, कोई उत्तेजित ना हो, किसी में कलेश ना हो, सब शांति से रहे। लेकिन तीसरी रक्षा सबसे महत्वपूर्ण रक्षा है, वो है आध्यात्मिक रक्षा, और ये राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। और यही जो पृथ्वी महाराज हैं आगे जब अपने नागरिकों को शिक्षा देते हैं तो वो बोलते हैं कि हे नागरिको, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, ऋषिगणों और नागरिकों सब ये ध्यान से सुनिए और मेरी बातों को कृपा करके अनुमोदन कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अनुमोदन नहीं किया मतलब आप इन चीजों का पालन नहीं करेंगे और आप अपनी जो वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार आपकी जो जो सेवाएं हैं सोसाइटी में उनको जब आप नहीं करेंगे तो उसका कर्म मैं भुगतूंगा। और लास्ट में प्रभु महाराज बोलते हैं क्योंकि आप लोग अपनी अपनी सेवाओं का ठीक से निर्वाह कर रहे हैं, भगवान के प्रति अपनी सेवाओं का निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं और थैंक यू बोलते हैं अपने नागरिकों को। तो ये प्रभु महाराज समझाते हैं, यहां से शिक्षा हमको ये मिलती है कि प्रभु महाराज जिस तरीके से रक्षा कर रहे थे हर एक व्यक्ति, खासतौर पर भक्ति लाइन में आने के बाद हम कहीं ना कहीं लीडर हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जब हम तिलक धारण करते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, कई लोग हमको देखते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, हमसे सीख लेने की कोशिश करते हैं, कई बार प्रश्न पूछे, कई बार प्रश्न नहीं पूछते, वैसे प्रश्न पूछने से पहले हमारी एक्टिविटीज को, हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, उसको वो देखते हैं। और उसमें स्टैंडर्ड होना, प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि यदाचर्ची श्रेष्ठ, बहुत बार कोट किया प्रभुपाद ने, और बोले कि ये भक्त जो होने चाहिए वो जेंटलमैनली होने चाहिए, बहुत, लेकिन जेंटलमैनली वो वाला जेंटलमैनली नहीं जो कि बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग एकदम कोट सूट टाई में बहुत अच्छे से एकदम जेंटलमैन होते हैं, लेकिन अंदर छुरी है, पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, वो नहीं। अब प्रभुपाद जो जेंटलमैन बोले, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज को अगर देखे तो वो जेंटलमैन नहीं, अगर उस दृष्टिकोण से हम जेंटलमैन को लगाएं कि टिप टॉप रहना, एक भी स्पॉट नहीं लगना चाहिए, एकदम कुर्ता धोती एकदम टिप टॉप, एकदम आयन होना चाहिए स्त्री करके एकदम फसला, तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज क्या उसमें नहीं आते? नहीं, वो भी आते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से जेंटलमैन थी, अंदर से जेंटलमैन थी, में सबसे पहला भगवान पे पूर्ण विश्वास होना, और जब कुछ भी बात बोलना तो वो सिद्धांत भगवद्गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत में से बोलना। प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त कभी भी ऐसी बात कोई नहीं बोलता जो जिसको कि सिद्धांत से सपोर्ट ना कर सके, सब सिद्धांतिक बात बोलता है, और सिद्धांत अपने मन से अगर बोला गया वो कितना भी अच्छा लगे वो लोगों का भला नहीं कर सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको समझना और धारण करना बहुत जरूरी है। अगर हमने किसी का बहुत भला चाहा, जैसे प्रभुपाद जी अहिंसा का परिभाषा समझाते हैं महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज करते हुए, बुरा मत मानिएगा अगर कोई महात्मा गांधी के सपोर्टर है यहाँ पे, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं महात्मा गांधी ने अहिंसा अहिंसा का नारा लगाया, लेकिन वो अहिंसा समझे ही नहीं कभी। हिंसा वो होती है, भगवान वो असल में भगवद्गीता शुरुआत ही होती है भगवान भड़काते हैं कि तुम मारो, तो प्रभुपाद बोलते हैं हिंसा वो होती है जो हमारे आध्यात्मिक, किसी के भी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक दिया जाए उसको हिंसा होती है। और अगर अगर किसी को मारना भी पड़े उसकी आध्यात्मिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए तो वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा है। क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात भगवान ने जो भगवद्गीता के शुरुआत में बोली कि हम आत्मा है शरीर नहीं, तो अगर शरीर के साथ कुछ भी किया जाए, मारा जाए काटा जाए, वो हिंसा तो है नहीं, क्योंकि जैसे ये ग्लास है यहां पर, यह निर्जीव चीज है, अब इसको मैं मारू कूट दूं पीस दूं क्या ये हिंसा है? हिंसा नहीं है, तो निर्जीव चीज को मारा गया, तो शरीर हमारा निर्जीव है, ये कभी जीवित तो है ही नहीं, लेकिन जो हम आत्मा है, जो इसको चेतना जैसा दिखता है आत्मा के रहने से, उस आत्मा की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और ये पृथ्वी महाराज ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात की, जो भी सुरक्षा दी, जो भी कुछ किया, उसका एक ही उनका उद्देश्य था कि उनके जो नागरिक हैं वो किसी ना किसी तरीके से भगवत प्राप्ति करें। और यही आगे चल के पांचवें स्कंद में ऋषभदेव भी बोलते हैं अपने अपने बेटों को, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत्स्यान् न पतिश्च सस्यान् न मोचेर यह समुपेत मृत्युम्। कि किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, किसी को रिलेटिव मतलब संबंधी नहीं बनना चाहिए, हमारे माँ बाप या ऐसे कोई रिलेटिव नहीं बनने चाहिए, किसी को पिता नहीं बनना चाहिए, किसी को माँ नहीं बनना चाहिए, किसी को देवता नहीं बनना चाहिए। अब ये देवता जो यहाँ पे बोले हैं प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में और कई लेक्चर्स में समझाते हैं, ये देवता मतलब लीडरशिप पोजिशन, किसी को लीडर नहीं बनना चाहिए, किसी को पति नहीं बनना चाहिए, जब तक न मोचिए समुपेत मृत्यु, जब तक वो अपने आश्रित लोगों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से इसकी चक्कर से बाहर निकालने का मार्ग ना दिखा सके। अब ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया है प्रभुपाद जी बार बार बोले, मार्ग ना दिखा सके, बाहर निकालने की जिम्मेदारी नहीं है, बोलना काम है, बताना काम है, निकलना सामने वाले को निकलना पड़ेगा। घोड़े को कुएं तक ले जाया जा सकता है, पानी नहीं पिलाया जा सकता, वो ना पीना चाहे तो क्या किया जाए। तो इसी को उसी ऋषभदेव के सेक्शन में, जब ऋषभदेव हमसे गुरु जो बोलते हैं अपने शिष्यों को इसी सीरीज में, कि कई चीजें बोलते हुए वो बोलते हैं कि किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए जब तक वो शिष्य को मार्ग ना दिखा सके भगवत प्राप्ति का। और ये गुरु का कर्तव्य ये बनता है कि बार बार अपने शिष्य को बोलता रहे, यहां तक कि शिष्य गुस्सा भी हो जाए फिर भी गुरु का कर्तव्य बनता है। अभी ये गुरु में लीडर भी ले सकते हैं सब, क्योंकि शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, कई प्रकार के गुरु होते हैं। तो गुरु का कर्तव्य बनता है कि अपने शिष्य को बार बार बोलते रहे, वो गुस्सा भी हो जाए, नाराज हो जाए, भाग जाए, कुछ भी हो, बार बार बोलता रहे। इसमें कई बार ऐसा होता है शिष्य को या सबॉर्डिनेट को, यार ज्यादा ही बोल रहा है, इतना मत बोल, चुप रहो। बच्चों को बहुत होता है, माँ बाप बार बार बोलते रहते, बेटा नहीं, मुंह में हाथ मत डालो, तो बच्चा परेशान होता है, कब घर छोड़ूंगा, कब मैं भी बड़ा होऊंगा, कब मेरे को नौकरी लगेगी। माँ बाप फिर बोलने को छोड़ो उसको, सबको बचपन में सबको ही अनुभव रहा होगा, ज्यादा ही बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, चक्कर चक्कर मत करो, कई बार तो निकल जाता है बच्चों के मुंह से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु इसमें बुरा ना माने, लीडर बुरा ना माने, और फिर भी गाइड करता रहे कि उनको आध्यात्मिक प्रगति। अब यहां पे फिर से एक और सर्कल आ जाता है कि आध्यात्मिक प्रगति तो कर रहे हैं, अब आध्यात्मिक प्रगति कैसे होती है, उसमें हम कई बार डिवियट हो जाते हैं। हमको लगता है सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, मंदिर में रह रहे हैं आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। अब थोड़ा सा हमको साधवो विशदाशयः, साधु को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग को खोलना चाहिए। अब ये मंदिर है, अभी तो इस्कॉन है, इस्कॉन के बाहर आज की परिस्थिति में हमको ऐसा लगता है इस्कॉन ये है, इस्कॉन के बाहर तो सब कर्मी है, क्योंकि प्रभुपाद ने इस चीज को बोला था सावधान ऐसा मत बोलो। प्रभुपाद अमेरिका में कई बार अपने शिष्यों को बोले तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि इस्कॉन में ही शुद्ध भक्त है, इस्कॉन के बाहर और खासतौर पर भारत भूमि में तो अनगिनत शुद्ध भक्त है। और भागवतम के पंचम स्कंद में दिया है कि साउथ इंडिया में जहां पे कावेरी वगैरह कृष्णा नदी बहती हैं, उनके तटों पे जो रहते हैं और उनका जो पानी पिएंगे, कलयुग में वहां पे साउथ इंडिया में बहुत भक्त होंगे। और हम देख सकते हैं हमारे संप्रदाय में ज्यादातर आचार्य जो हैं वो साउथ इंडिया से हैं, तो बहुत भक्त हैं। अब हमको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड ये करना है कि अभी हमको लगता है कि भक्ति में हम लगे हैं तो मंदिर में अगर सेवा कर रहे हैं सारी सेवाओं से हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। लेकिन भगवान बोलते हैं भगवद गीता में ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव वचामि, कि जिस तरीके से जो मेरी सेवा करता है, हरिनाम भी करता है, सब कुछ उसके किस पे डिपेंड करता है, वो किस एटीट्यूड से, किस भावना से मेरे पास आ रहा है, वो क्या चाहता है। अगर हम भगवत प्रेम नहीं चाहते हमको भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत जोरदार कर रहे हैं और अंदर चल रहा है, इसलिए दशवां अपराध क्या है कि मालूम होते हुए, जानते हुए, बहुत शिक्षा लेते हुए कि अध्यात्म ये भौतिक जगत के एक भी चीजों से, पत्थर से भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, फिर भी आसक्ति बनाए रखना, ये दशवां अपराध है। अपराध का मतलब क्या होता है, अपराध का मतलब होता है अपराध, राधा रानी से, मतलब आराधना से, भगवान की भक्ति से जो हमको विमुख करे वो है अपराध। ये अपराध किसी को हमने नहीं किया, लेकिन हमने क्योंकि भौतिक आसक्ति रखी। और सबसे अच्छा अजामिल के सेक्शन में, ट्रांसलेशन में प्रभुपाद दिखते हैं कि अजामिल गिरने से पहले नाम जप करता था, सबको पता है नाम जप करता था, और उसमें 26 के 26 गुण भी थे। अगर उन गुणों को देखें, अजामिल में गिरने से पहले कितने गुण थे, फिर वो कैसे गिरा। तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी जो लिखते हैं कि जो ब्रह्मचर्य तपसा ब्रह्मचर्य ने, वो जो श्लोक है इससे शुरू होता है, उस श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कि अजामिल ब्रह्मचारी था, तपस्या करता था, सब कुछ करता था और नाम जप करता था भगवान के नामों का। और वहां पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये नाम जप जो है सबसे अच्छा कर्मकांडी एक्टिविटी है, सारे कर्मकांडी पद्धतियों में सबसे अच्छी कर्मकांडी पद्धति क्या है, भगवान का नाम जप करना, सबसे सर्वशक्तिशाली है। बाकी देवताओं की पूजा करना ये वगैरह करना भगवान को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं, वो भी कर्म कांड में आ सकता है, डिपेंड करता है हमारी भावना पे। इसलिए इस्कॉन का ट्रांसलेशन क्या है, कृष्ण भावनामृत संग। अगर कृष्ण भावनामृत नहीं है और हम वही कर रहे हैं, वही एक्टिविटी है, हमको वो डिजायर्ड गोल नहीं मिलेगा। और ये राजा का कर्तव्य, ये लीडर का कर्तव्य बनता है कि भावना अपनी बदले और अपने जो आश्रित हैं उनकी भावनाओं को बदले। और इसके लिए प्रहलाद महाराज जब शुरू करते हैं, कई बार हम भक्ति में लगने के बाद भूल जाते हैं, प्रहलाद महाराज के श्लोक तो बोल देते हैं, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम बोल देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्टिविटी में हमको लगता है कुछ करना चाहिए, अरे कुछ करना चाहिए, अरे उठो कुछ करना चाहिए ना। असल में प्रभुपाद जी जब प्रचार करते हैं अमेरिका में, प्रभुपाद जी बोले मैंने जितनी सेवाएं बनाई हैं, जितना कुछ बनाया है, डेली वर्शिप है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, देखिए ऐसा मत लीजिएगा कि मैं पर्सनली बोल रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं प्रभुपाद जी बोले या नहीं। प्रभुपाद जी बोले मैंने जितनी सेवाएं बनाई हैं वो इसलिए बनाई हैं कि तुम लोग शुद्ध नाम निरंतर ले सको। एक और जगह पर प्रभुपाद बोले अगर मुझे एक ऐसा शिष्य मिल जाए जो पूरे समय नित्यम भागवत सेवा परीक्षित महाराज जैसे पूरे समय भागवतम सुनता रहे तो मैं सिर्फ भागवतम बोलता रहूंगा, लेकिन तुम लोग इस स्तर पे नहीं हो इसलिए तुमको दूसरी सेवाओं में लगाना पड़ता है। क्योंकि देखिए अभी ये जो सेवा है, अभी आज तो इस्कॉन में भक्ति है, सही भी बात है, मोटा मोटी सही भी बात है कि इस्कॉन के बाहर ज्यादातर कुतर्क गर्त है और कुछ नहीं है, ज्यादातर नाम के लिए भक्ति बोलते हैं, भक्ति करते नहीं, ठीक है, प्रामाणिकता से श्रवणम कीर्तन में नहीं लगते। लेकिन एक समय था आज से 1000-2000 साल पहले कि पूरे भारत में बहुत अच्छे से भक्ति होती थी, मतलब पूरी ये जो इस्कॉन की योजना है मंदिर में जाना, उस वो भक्ति की मैं बात कर रहा हूं, मंदिर में 3 बार जाना या शास्त्रीय संध्या, 3 बार गुरु वंदना करना, भगवान को वंदना करना, भोग लगाना, सब होता था। परंतु लोग दूसरे कामों में भी लगे होते थे। अब यहां पे वो स्थिति में जहां पे ऐसा पूरे भारत का वातावरण था, वहां पे प्रहलाद महाराज ने शिक्षा क्या दी, शुरुआत क्या की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इससे भक्ति शुरू होती है। अगर हमने श्रवण नहीं किया तो हमारी जो चेतना है वो कभी चेंज नहीं होगी। आज हमने माला जप की और कल भी माला जप की, लेकिन श्रवणम नहीं कर रहे, इन श्लोकों को याद नहीं कर रहे, इनसे शिक्षा नहीं ले रहे, तो हमारी कल की माला जो होगी उसमें भी वही चेतना से माला करेंगे। मान लीजिए आज मैं पहले दिन आता हूं और मेरे को जीवन में एक आशा है कि मेरे को 10 करोड़ रुपए कमाने, कई लोगों का ऐसा होता है कि मैं 10 करोड़ रुपए, मेरे को बस ये लिमिट है, वैसे 10 करोड़ कमाने के बाद फिर लगता है 10 करोड़ तो कम है, 100 करोड़ कमा लूं तो, लेकिन इच्छा है 10 करोड़ कमाने, तो मैं आज आ गया भक्ति में लग गया, हरे कृष्णा, और भक्तों ने बोला भैया थोड़ा सा पढ़ा करो सुना करो, मैं बोला नहीं, मैं तो बस ना हरिनाम ले रहा हूं, मैं सबसे सबसे उत्तम कार्य कर रहा हूं, हरे नाम ही में केवल, आपने तो बोला हरे नाम ही केवल, तो और क्या चाहिए, मैं कर ले रहा हूं। तो होगा क्या, आज मेरी चेतना है 10 करोड़ कमाने की, कल भी 30 करोड़ कमाने की चेतना से ही मैं हरिनाम लूंगा, परसों भी उसी से लूंगा, तरसों भी, और फिर मेरे को क्या होगा, भगवान मेरे को 10 करोड़ रुपए दे देंगे, और जब मेरे को 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो क्या हरिनाम ही भूल जाऊंगा, बराबर, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, प्रभुपाद कोट करते हैं इसको कि दुख में सब सिमरन करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। और यही प्रहलाद महाराज बोले, प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव को प्रार्थना करते हैं फिर 10वें अध्याय में 7वें स्कंद के, प्रहलाद महाराज शुरू करते हैं, जब नरसिंहदेव सारी प्रार्थना से बड़े खुश हो जाते हैं, नरसिंहदेव बोलते हैं बेटा बोलो तुमको क्या चाहिए, जो चाहिए मैं तुमको देने को तैयार हूं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं मामाम प्रलोभ उत्पत्ति सत्तम कामेशु कैर्वरी तत् संग भीतो निर्विन्नो मुमुक्षु काम उपाशितः, बोलते हैं हे भगवान मामाम प्रलोभय उत्पत्ति, कि हे भगवान मेरे को प्रलोभित मत करो, कृपा करके तू तत् संग भीतो निर्विन्नो, मैं ऐसे कुल में पैदा हूं राक्षसी कुल में, बहुत मैंने इंद्रतृप्ति की है, उसकी मेरे को बड़ी रुचि है, अब आप और फिर रुचि मत बढ़ाओ, इन चीजों को मत दो, मेरे को नहीं चाहिए, मैं क्या किस लिए आया हूं कि एकदम पूरी तरीके से आपको शरणागत करने, इस दुनिया का एक पत्थर भी एक तिनका भी मुझे नहीं चाहिए, और ये प्रभुपाद जी भी बोले, जब तक हमको इस दुनिया के एक तिनके की भी आसक्ति है तो हमको पुनरावृत्ति जन्म पुनरावृत्ति मरण में आना पड़ेगा, अनिवार्य है। इसके ऊपर प्रभुपाद जी दो लेक्चर में मैंने सुना, प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आपने दो, कई बार हमको लगता है दान दक्षिणा बहुत अच्छा है, भगवदगीता में बोलते हैं दान दक्षिणा इन चीजों को, तपस्या इन चीजों को कभी मत त्यागो, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपने $200 किसी को दान दिए हैं तो अगला जन्म लेना पड़ेगा $400 के लिए। अब सोचिए $200 मेरे पास आए, दे दिए मैंने, अब $400 अगले जन्म में लेने के लिए मेरे को पता नहीं कितने दिन जीना पड़ेगा, क्योंकि कभी $10 आएंगे, फिर 10 आएंगे, फिर 10 आएंगे, तब तक जीना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। और सबसे बड़ा तकलीफ क्या है, इस भौतिक दुनिया में वापस आना, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। देखो हमको बर्थडे में हैप्पी बर्थडे टू यू, उसमें हैप्पी होने वाली बात क्या है, अरे जन्म लिया गर्भ में 9 महीने भूल गए, लेकिन भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया ते नाना वेद व्यथा। हे भगवान, ये सॉन्ग जो भक्तिवेदांत ठाकुर ने लिखा इतना सुंदर है कि बताते कैसे मैं भगवान गर्भ में, तीसरे स्कंद में लिखा है कि बच्चा बोलता है गर्भ में, क्या है तस्मादहं विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानमाशुतम सह सुहृदात्मनैव, कि हे भगवान अभी मैं समझ गया हूं, बहुत तकलीफ में हूं, लास्ट में बोलता है, निकलने से पहले बच्चा ये बोलता है, फिर लेकिन भगवान धक्का मार के निकाल ही देते हैं, निकलने से बोलता है तस्माद अहम विगत विक्लव उद्धरिष्य, हे भगवान अब मैं वचन लेता हूं कि उससे पहले बोलता है मैं बाहर नहीं निकलना चाहता, ये गर्भ में जो मेरे को वेदना मिल रही है बहुत अच्छी है, भगवान से बोलते बहुत अच्छी है, इसमें मैं आपको याद तो रख रहा हूं, वही जो कुंती महाराज ने कहा है विपदा संतुता शाश्वत, वही बोलता है बच्चा कि गर्भ में जो वेदना बहुत अच्छी है, मैं इसी में रहना चाहता हूं, मैं बाहर नहीं निकलना चाहता अब, लेकिन अब मैं वचन लेता हूं तस्माद अहम विगत विक्लव उद्धरिष्य, कि मैं इस बार अब ऐसा बाप का भजन करूंगा कि भूयो यथा व्यसनम एतद अनेक रंध्रम मामे भविष्य विष्णु पाद, कि भगवान अब मैं आपके पाद चरण कमलों को कभी नहीं भूलूंगा। और यही होता है, फिर कपिल देव बोलते हैं उसके नेक्स्ट में कि ये बोलता है बच्चा और नेक्स्ट फिर अंदर से बहुत जोर से हवा का प्रेशर आता है और बच्चा बाहर निकल जाता है, जब बाहर आता है तो रोता होता है किर किधर आ गया, तो बच्चे ये भक्तिवेद ठाकुर के सामने बोलते हैं माँ बाप फिर उसको खिलौना दिखने बेटा 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 खुश हो जा, तो आ गया हमारे साथ, हम भी दुखी है तू भी दुखी है, आराम से कोई टेंशन नहीं है, कहीं के लिए याद करता है भगवान को। तो फिर बाद में बुढ़ापे में भक्तिवेद ठाकुर बोलते हैं अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बार्धक्य खोना भक्ति में कांदिया कांदिया कातर अति, क्या मैं बूढ़ा हो चुका हूं, पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, बच्चे पैदा करने में, माँ बाप का देखने में, बच्चों को देखने में, और मैं बड़ा खुश था कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और अब बुढ़ापे में जब कमर दुख रही है, साथ नहीं देती, जबान भी साथ नहीं देती, हरे कृष्ण नींद आ जाती है, तो अब याद कर रहा हूं क्या किया भगवान, अब की हो गए मार मोर गति, अब क्या होगा मेरे साथ, भगवान कहां जाऊंगा। तो ये रक्षा करना असल में लीडर्स का, किसी भी स्तर के लीडर का, गुरु न सत्या जननी स्वजनों न सत्या, किसी भी स्तर के लीडर का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि श्रवणम कीर्तनम जो है क्वालिटी लीडर है, और उसमें क्वालिटी में उनकी चेतना बदले, वरना हमारी जितनी भी सेवा हम पूजा कर रहे हैं, हम तुलसी आरती कर रहे हैं और सबको पता है वो क्या है, वो विलास कुंजे दियो वास की जगह अमेरिका कुंजे दियो वास वगैरह आ जाता है, वो अपने आप आ जाता है, जब चेतना नहीं बदल रही तो वो आ ही जाएगा। और ये असल में हंसने वाली बात नहीं है, बड़े दुर्दैव की बात है, सोचिए इतना सब छोड़ के इधर आए। अब आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, इस्कॉन में यहाँ पे हमारे ये कोई ऐसे अपराध भावना से नहीं, यहां पे आप जीवी से तक बन जाइए, गुरु बन जाइए, कितने लोग आपको पहचानेंगे, मंदिर के बाहर कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं, तो क्या नाम प्रतिष्ठा, भक्ति में कोई नाम प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि भगवान बोलते हैं जो मेरी भक्ति में लगता है अगर मैं उस पर बहुत कृपा करता हूं तो क्या करता हूं हर्षित धनम जनई, और फिर उसके बाद सुजना दुख दुखी एकदम, सब उसको छोड़ देते हैं, सब उसको दुख देते हैं, तो हमको कोई नहीं पहचानता बाहर, हमको अंदर ही बड़ा लगता है, सब लोग मेरे को पहचानते हैं, कोई नहीं पहचानता। लेकिन एक पान की टपरी खोल दीजिए बाहर, पान की दुकान, छोटी सी पान की दुकान, बीड़ी तंबाकू और गुटखा होना चाहिए उसमें, और देखो कितने लोग पहचानेंगे, पूरा वृंदावन जानेगा। अरे महाराष्ट्र में आप जाइए तो एक वड़ा पाव की दुकान खोल दीजिए, बस वड़ा पाव, काम खत्म, भेलपुड़ी, और कितने लोग पहचानेंगे। तो गलत है अगर ये धारणा, दुर्दैव की बात है कि सब कुछ छोड़ के क्या प्राप्त करना है, हमको ऐसा हीरा मिल सकता है जो कि हमको दूसरी जगहों पे नहीं मिल सकता। वो हीरे को छोड़ के हम छोटी छोटी चीजों में लगे और समझ नहीं पा रहे, कई बार भूल जाते हैं, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, समझ भूल जाते हैं हम, हमको लगता है बड़ा बड़ा यहां पे भी ये किया वो किया, यहां पे नाम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फालतू है वो, पर्पज नहीं है, पहली बात भक्ति का वो पर्पज नहीं है, और उसमें मिल भी गया तो क्या खो जाएगा, कुछ नहीं है, फिर से उसी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमको समझना इस बात को कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसमें लोगों को गाइड करना, खुद भी गाइड होना, और इससे डिविएट ना होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि श्लोकों को याद करें। अब मैं जिस पॉइंट पे आऊंगा कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो प्रभुपाद जी जैसा बोले कि मेरी किताबों को अगर आप वर्बेटिम याद करो, जहां तक हो सके, होगा नहीं कभी, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को भाव के साथ 18 के 18,000 श्लोक भागवत के याद हो, होगा नहीं, लेकिन ये इतने होगा ये नहीं, फिर मैं क्या करूं, ऐसा फिसड्डी बच्चे जैसे, नहीं बच्चा फिसड्डी होता है, बैक बेंचर होता है, अरे यार अपने को तो टॉप मिलेगा ही नहीं, क्या छोड़, वो फिसड्डी रहता है, नहीं कोशिश करना इस लक्ष्य को, लेकिन भाव के साथ, इसलिए नहीं कि और लोगों को दिखाना है, क्लास देनी है, बड़ा आदमी बनना है, ना, इसलिए कि भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत सूत्र हैं, ये सूत्र ऐसे फॉर्मूले हैं, कभी जैसे आपने मान लीजिए ये एक श्लोक, ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो न ये वते आदि अंत वंत कौनते नतेषु रमते बुधा, ये आपने याद कर लिया। अब मान लीजिए कभी ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं पे बस में जा रहे हैं, और पिक्चर चल रही है, पिक्चर देखने में बड़ी रुचि आ रही है, हाँ कितनी अच्छी पिक्चर है, वो पुरानी पिक्चर देखी, तभी वो याद आएगा, तो उसे याद किया ना उसको, यही संस्पर्श, अरे ये दुख देगा यात्रा को, चुप है, कम से कम इतना तो होगा, तो हटाएंगे, फिर जाएगा, फिर हटाएंगे, तो एक समय पर ऐसे प्रैक्टिस करते करते होगा क्या, एकदम से एकदम छूट जाएंगे, हमको कोई आसक्ति नहीं रहेगी, देख के भी, जैसे प्रभुपाद जी एक बार प्लेन में देख रहे थे वो चार्ली चैपलिन का शो, प्रभुपाद को उसमें कोई रुचि नहीं थी, प्रभुपाद बस उसकी विभूति देख रहे थे, कृष्ण की विभूति, लेकिन ये स्तर जब तक नहीं है तब तक हटाना है आपको, नहीं तो अरे मैं कृष्ण की विभूति देख रहा हूँ, अच्छा सब कृष्ण की विभूति है, लेकिन भाई तेरे लिए क्या है। प्रभुपाद जी बताया कि एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अजामिन के सेक्शन में, आई थिंक वहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नहीं अजामिन ने कोई और सेक्शन में, वहां पे लिखते हैं कि भौतिक उपलब्धियां, भौतिक ऐश्वर्य एक शुद्ध भक्त जैसे परीक्षित महाराज वगैरह के हाथ में जब आता है तो वो कृष्ण का गिफ्ट है, भगवान कृष्ण ने दिया, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में लग रहा है पूरी तरीके से, 110% भगवान की सेवा में लगता है, तो वो कृष्ण की तरफ से उसको तोहफा है, उसकी प्रगति भक्ति में और होगी। लेकिन जब नवसिखिए भक्त को वही आता है या कर्मी को वही आता है तो वो माया का तोहफा है कि बेटा आ जा मेरी गोदी में लेट जा, अब सोते रहे, माया में सो, अब मैं तेरे को मारूंगी, त्रिताप दुर्गा देवी ने त्रिशूल दे रखा है, मारती रहती है, तो वही चीज है, लेकिन किसी के ऊपर कुछ और किसी के ऊपर कुछ, एक का खाना दूसरे का विष है। तो इसके लिए बड़ा सावधानी की बात है कि ये प्रिंसिपल्स को हम जब धारण करते हैं तो सारे चीजों को, हम सारे श्लोकों को जब कॉन्टेक्स्ट में रख के रखेंगे, इसलिए श्लोकों को याद करना बहुत जरूरी है, जब सारे श्लोकों को कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे तो एक चीज नहीं, जैसे ये आ जाता है क्या बोलते हैं युक्त वैराग्य, हाँ बहुत अच्छा है युक्त वैराग्य होना चाहिए, लेकिन युक्त वैराग्य इतना ही निकालना नहीं है, युक्त वैराग्य की पूरी परिभाषा क्या है कि अनासक्त से विषय, विषय में अनासक्त नहीं, और इसमें ऑनेस्टी, खुद की खुद का प्रामाणिकता कि भैया मैं आसक्त हो रहा हूं या नहीं, क्योंकि जब पतन होएगा ना तो मेरा ही होगा, बाकी लोग देखेंगे अरे हो गया ये तो गया ब्लू हवा जाएगी बस। इसलिए बहुत सावधान, खुद को खुद के साथ में सावधानी, शास्त्रों के मर्म को समझना, सारे श्लोकों को याद करने की कोशिश करना, वो हमको बचाएंगे और उसके साथ साथ में भगवान का सहारा लेना, भगवान से प्रार्थनाएं करते रहना, भक्ति विनोद ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थनाओं को याद करके प्रार्थना करते रहना। ये प्रार्थना भक्ति का एसेंस जो है वो प्रार्थना है। और ये जब इसके ऊपर लास्ट ट्रांसलेशन जब करते हैं षड गोस्वामी आष्टक का, तो प्रभुपाद यही लिखते हैं, हाँ कैसे याद होता है, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ने कुतः, घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदैर महाविह्वलौ। इसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद करते हैं कि जो षड गोस्वामी थे वो सारी एक्टिविटी करते हुए, हरिनाम जप या भगवान की पूजा आराधना या प्रचार करना या शास्त्रों को लिखना, उनके मन में क्या चल रहा था, ये भावना चल रही थी, विह्वल था मन में, एक विह्वल मतलब एक भूचाल आया हुआ था कि हे राधा रानी आप कहां हो, हे कृष्ण कहां हो, हे गोप गोपिया कहां हो, क्या आप गोवर्धन में हो, क्या यमुना तट पे हो। इस भावना से जब हम भक्ति करते हैं प्रभुपाद लिखते हैं, तब उस भक्ति का असर होता है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते जो मैं शुरुआत में बोलता था, अगर हम ये भावना हमारी नहीं है, भगवान को खोज नहीं रहे, तो हम ब्रज में हो सकते हैं और हो सकता है हरिनाम हम ले रहे हैं, 10,000 गुना फायदा हो रहा है उसका, पर किस तरफ जा रहे हैं, हम भौतिक आसक्तियों में बढ़ते चले जाएंगे। और ये अपराध का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है इसका, जब हम बहुत शुद्ध नाम लेते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। और भगवान क्या बोलते हैं, जब मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं तो सब कुछ मैं छीन लेता हूं। इसका ऑपोजिट करते हैं, जब हम अपराध करते हैं तो हमारी भौतिक चीजें बढ़ती चली जाएंगी। ज्यादातर हमारा इंप्रेशन ये होता है किसी के ऊपर बहुत तकलीफ है मतलब अपराध का फल है ना, अपराध का फल उल्टा होता है, अपराध का फल होता है भगवान अपने से दूर करते हो। अपने से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको सुख देना, भौतिक सुख देना, क्योंकि दुख आएंगे तो कुंती महारानी भी चाहती है, दुख आएंगे तो भगवान को याद करेगा वो, तो पास में बुलाते हैं जब भगवान किसी को बहुत प्रिय हो जाता है, जब वो बहुत अच्छा हरिनाम लेता है, बहुत अच्छी सेवा करता है, तो भगवान उसको दुख देते हैं। ये गिफ्ट है, अब ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो भक्ति करेंगे, अरे बाबा दुख आएगा कौन करेगा भक्ति, नहीं, लेकिन ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं, द पाथ बैक होम बैक टू गॉड इज स्टडेड विद थॉर्न्स। भगवत मार्ग जो है, भगवत धाम का मार्ग जो है, वो कांटों से भरा हुआ है, वो परीक्षा बहुत जरूरी है, ये समझिए, परीक्षा बहुत जरूरी है। ये हमको कुछ बहुत, अगर मान लीजिए किसी को 10वीं में 90% लाने, तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, 1 साल नहीं 10 साल तक वो मेहनत करता है, रात दिन एक करता है, 12-12, 14-14, 18-18 घंटे काम पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो क्या है, बड़ी तकलीफ है, लेकिन उसका अंततोगत रिजल्ट क्या है, मेडल मिलेगा, वो यूजलेस है मेडल, ठीक है, लेकिन यहां पे हम किसमें लगे, कि भगवत प्राप्ति में लगे। भगवत प्राप्ति मिलने के बाद अगर हम दशम स्कंध पढ़ेंगे तो पता चलता है भगवत प्राप्ति मिलने के बाद हरि बोल चलेंगे, बस भगवान के साथ खेलना है, कूदना है, खाना पीना मजे करना है, भगवत हम कर जाएंगे, कुछ नहीं, कोई तपस्या नहीं है, कुछ नहीं है, ना एकादशी है, ना द्वादशी है, ना कुछ है, पूरा समय भगवान के साथ खेलेंगे, कभी बंदरों को चिढ़ाएंगे, बंदरों के साथ कुश्ती लड़ेंगे, कभी चिड़ियाओं के साथ खेलेंगे, उनकी आवाज निकालेंगे, और सबकी आवाज हम निकाल सकते हैं, और बड़े सुंदर दिखते हैं, इतने सुंदर के ऐसा विवरण आता है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो जो ब्रह्मा जी जिस कमल पे बैठे थे उस कमल में सारे जीव थे, और ये पूरा कमल चमकदार था, क्योंकि जीवों से। तो हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं अभी, जो भी शरीरों में हैं, किसी को अपना शरीर पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, पर हम सब जो असली हमारा शरीर है बड़ा मस्त है, अमेजिंग, बहुत सुंदर है हम लोग। ये जब प्रभुपाद एक बार एक लेक्चर दिए और प्रभुपाद बोले हम आत्मा है, शरीर नहीं, और आत्मा ऐसा है, तो एक मोटी औरत थी वहां पे, वो अमेरिका में ओबिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम है मोटापे की, वो मोटी औरत थी, खुली आई एम ग्रेटली रिलीव टूडे, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत शांति मिली, क्योंकि लोग मुझे चिढ़ाते थे तुम मोटी हो मोटी हो, और आज मुझे पता चला मैं मोटी नहीं हूं, मैं पतली नहीं हूं, मैं तो बड़ी सुंदर ये सब चाहते हैं, आईने को देखते हैं बोलते हैं हम सुंदर हैं, तो हम एक्चुअली बहुत सुंदर हैं, और वो हमको प्राप्त हो सकता है, वापस प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना, तो अभी थोड़ा सा तकलीफ अगर लेंगे हम, वो तकलीफ आएगी, भगवान टेस्ट करेंगे, टेस्ट किए बिना क्या होएगा मन में, टेस्ट अगर नहीं करेंगे भगवान प्रलोभन भी देंगे, गिराने की भी कोशिश करेंगे, सब कुछ टेस्ट करेंगे, ये अगर भगवान नहीं करेंगे तो क्या होगा पता है, वो नारद मुनि की स्टोरी हम सबने सुनी है कि नारद एक बहुत बड़ा भक्त था एक गांव में, वो चाहता था सब लोग भगवत धाम जाए, तो नारद मुनि को बोला नारद मुनि आप में तो इतनी शक्ति है ना, मेरे गांव वाले अच्छी भक्ति कर रहे हैं लेकिन कोई भगवत धाम नहीं जा रहा, आप सबको ले जाइए, तो नारद मुनि बोले अरे कोई नहीं जाएगा बेटा, क्यों नहीं, नहीं नारद मुनि एक बार आप लेक्चर दो तो सही, तो नारद मुनि ठीक है फलाना फलाना दिन मैं लेक्चर दूंगा, सबको इकट्ठा कर दूंगा, सब इकट्ठा होगा, नारद मुनि ने लेक्चर दिया, बोले आज मैं सबको भगवत धाम ले जाता हूं, भगवान नहीं भी चाहेंगे मैं लेके जाऊंगा, तुम मेरे पीछे चलो, तो सब पीछे चले, और नारद मुनि इस भक्त को बोले तू तो क्वालिफाइड है, तू तो भगवत धाम जाएगा, तेरे को कोई आसक्ति नहीं, इन लोगों का तमाशा देखना, तेरे को जब तक मैं ना बोलूं पीछे मुड़ना नहीं, लेके गए लेके गए लेके गए, तो जब सत्यलोक आया सत्यलोक से पीछे मुड़ के देखने को बोला, सत्यलोक से बाहर निकलने लगे, जब विरजा नदी को पार करने के पास में आए तो पीछे मुड़ने को बोला, पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था, बस नारद मुनि, मुझे नारद मुनि इसका तात्पर्य क्या है, तो बोले बेटा ये लोग आसक्ति वाले लोग हैं, कोई तो अमेरिका में अटक गया, कोई इंग्लैंड में अटक गया, कोई चलते चलते फिर स्वर्ग लोक के नंदन कानन में अटक गया, कोई और ऊपर ऊपर लास्ट में सत्यलोक में आखिरी भी बचा था वो भी जुड़ गया, तू एक बचा है तू और मैं चलो तो ये बहुत तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम भक्ति अच्छी करेंगे उसमें तकलीफ आएंगी, तकलीफ आते समय डीमोरलाइज ना हो। अब समाप्त करने के लिए एक स्टेटमेंट बोलकर समाप्त करूंगा, ये जयानंद प्रभु जिनके जिनकी फोटो हर रथ यात्रा कार्ड पे प्रभुपाद ने रखने को बोली, उनकी ये स्टेटमेंट है, जयानंद प्रभु से एक बार, जयानंद प्रभु बहुत हम्बल थे आप सबको मालूम है, बहुत नम्र थे वो, हालांकि जीबीसी लोग उस समय प्रभुपाद के समय पे, प्रभुपाद से पहले उन्होंने शरीर त्याग दिया जो नहीं जानते उनके लिए, तो जीबीसी जो थे प्रभुपाद के वो आके उनसे एडवाइस लेते थे, और इनको कई बार प्रेसिडेंट बनाया, वो प्रेसिडेंट बनते थे और फिर वो देखते थे यार मैं क्वालिफाइड नहीं, उनको लगता था जो क्वालिफाइड होते उनको क्वालिफाइड नहीं लगता, वो उतर जाते थे नीचे, और फिर वो पूरा दिन कमाते थे, रात को संडे फीस में वो कुकिंग करते थे, हर दिन वो कुकिंग करते थे, रात को वो सबसे लेट सोते थे, कचरा उनको सबको जो नया आता था मंदिर में उसको लगता था ये तो कचरा बीनने वाला आदमी है, ये इंप्रेशन था, और ये बहुत ही अमेजिंग डिवोटी थे, धोती कुर्ता नहीं पहनते थे क्योंकि कचरा उठा रहे तो धोती कुर्ता अच्छा नहीं लगता लोगों को, बैड इंप्रेशन जाएगा भक्त ऐसे गंदे, तो आराम से रहते थे, और वो उन्होंने एक बार गार्डनिंग ऐसे कर रहे थे, वो सब कुछ करते थे मंदिर का जो भी सेवा होती थी सब करते थे, गार्डनिंग कर रहे थे, हाँ एक बार उनको भागवतम देने को बोला तो वो भागवतम क्लास में बैठे थे, और इतनी मेहनत करते थे कि उनको नींद आ गई थी, इतने अमेजिंग, एनीवेज वो गार्डनिंग कर रहे थे ऐसे काट रहे थे इसको, तो अच्छा उनके हरिनाम के बारे में ऐसा बोलते हैं, उनको किसी ने कभी, पहली बात तो उनको किसी ने 10 साल के उनके कैरियर में जब तक वो जीवित रहे, जब तक वो शरीर में रहे तब तक उनको किसी ने सोते हुए नहीं देखा, उनकी बायोग्राफी में लिखते उनके गुरु भाई प्रभुपाद देसाई तक, कि उनको सोते हुए नहीं देखा, और जब वो हरिनाम कभी कभी उनको हरिनाम लेते हुए देखा, बस वो लेते थे तब जब ये लोग सोते होते थे शायद, तो एक दो बार जब देखा तो वो बोलते ऐसा जप करते थे वो कि पूरा ऐसा लगता था मंदिर बंद हिल रहा है, इतना पावरफुल जप था, तो ये इतने शुद्ध थे कि प्रभुपाद ने बोला है रथ यात्रा कार्ड पर उनकी फोटो रहे, तो इनके पास एक बार एक भक्त आए, नया आदमी आया, वो एक बार भक्तों से पूछा कि अच्छा आप लोग मेरे को बताओ, तो किसी को प्रेसिडेंट बना के रखा था उसके पास जाके पूछा कि आप मुझे बताइए कि भक्ति में सबसे जल्दी हम तीव्रता से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो बोला मुझे तो मालूम नहीं, देखो हमारे अग्रणीय भक्त हैं वहां पे जयानंद प्रभु हैं तो उनसे जाके पूछ लो, तो ये बोले जयानंद, वो बोले टेम्पल प्रेसिडेंट है, तो बोला वो कहाँ है, तो बोले किसी से भी पूछे तो देखा देखा उसको लगा थे अरे टेम्पल प्रेसिडेंट होगा तो कुछ सूट बूट में अच्छा है ऐसा, तो ढूंढा ढूंढा मिल ही नहीं रहे, तो फिर किसी ने बताया वो जयानंद प्रभु उधर बैठे थे, तो वो वहां पे गार्डनिंग कर रहे थे और एकदम गंदे कपड़े शरीर में भी गंद धूल मिट्टी बैठी थी, तो जाके पूछा अरे जयानंद हाँ हाँ माई गुड सर, तो अच्छा 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 है, मेरे को किसी ने बोला तो उसका वो भक्त का नाम मैं भूल गया, वो भक्त बोल रहे थे वो भी प्रभुपाद डिसाइपल ही हुए बाद में, वो भक्त सोचे यार इससे क्या पूछूंगा, इसको क्या मतलब कहाँ भेज दिया यार भिखारी के पास, नहीं वैसा बोला तो पूछ लेता हूँ। तो पूछा कि अच्छा जयन तो ये बताइए आप कि भक्ति में सबसे ज्यादा प्रगति कैसे होती है। तो उन्होंने बोला मेरे को ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं, शास्त्र पढ़े नहीं मैंने, पर मैंने सुना है ऐसा कि एक चीज का तुम अगर विश्वास करो कि जीवन में बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ जाएगा, पर जो भी आए जो भी जाए, मतलब धन संपत्ति ऐश्वर्य जो भी आए, लोग आए जो भी आए जो भी जाए, एक चीज पे कभी विश्वास मत छोड़ना, वो है हरि नाम। हरि नाम तुमको पार लगाएगा, इस जीवन से मुक्ति मिलाएगा, इस पे अटूट विश्वास रखना, चाहे तुम्हें तुम्हारे पास कुछ भी आए चाहे कुछ भी खो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमको ध्यान रखने वाला है कि ये समराइज करते हुए ये लीडरशिप की, और हम सब लीडर हैं किसी ना किसी स्तर पे, तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि इस डायरेक्शन में लोगों को लेके जाएं, ये भौतिक दुनिया इसको अच्छा बनाने की हम कोशिश ना करें, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंततोगत्वा इस पर प्रलय आने वाला है हम सबको। लेकिन ये दूसरों को गाइड करने से पहले खुद का उद्धार करें, नहीं तो जन्म सार्थक करी इसलिए चैतन्य बोले कर पर उपकार, नहीं तो मैं कीचड़ में पड़ा हूं दूसरों को क्या निकालूंगा, अरे तू भी आ गया कीचड़ में, मिजरी लव्स कंपनी, ठीक है। तो ऐसा ना करें, पहले तो इसको धारण करें, और वो भागवत का है नित्य श्रवण, नित्य पढ़ना, और प्रभुपद के तात्पर्य को ठीक से डालने से हो जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ध्यान से सुनने के लिए, छुट्टी हुई है हरे कृष्ण। माता जी मुझे सच में नहीं पता, इसलिए मैंने लिया नहीं ईमानदारी से, पुष्य अभिषेक इतना जैसे जनार्दन महाराज सुबह बोले थे कि भगवान को घी से उनका अभिषेक होता है, अब उसका क्या बैकग्राउंड है मैंने कभी पता या याद नहीं, मंद सुमंद मत हरे
कर्तव्य है, माताओं का कर्तव्य है बच्चों के साथ। आदमियों का बर्तन है, माताओं का नहीं। आदमी का उद्धार हुआ, माता का उद्धार हो जाए, पति का कर्म माता का कर्म, चिंता करने की जरूरत नहीं। एक दूसरी चीज, आप अपना कर्तव्य उसके साथ तो उद्धार सफाई हो रही है, आ सकता है, पर पता नहीं चल रहा, अभी नहीं पता। वो क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि जैसे हमको पता चलता है ना, अरे मेरा तो ये वासना का पड़ा करके क्या होता है, अहंकार।